हेलो
हेलो हेलो,
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज आ रही है
जी? मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो चैट बस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप शो सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया और आज मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं शहनाज नफीस, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीफोन पर 08007789। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, आप लोगों ने फेसबुक पर बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं और खुशामदीद कहा है हमारे गेस्ट को। और लेकिन आपको ये बता दूं कि हम पहले 20-25 मिनट आपकी कॉल्स नहीं लेंगे, जब जवाब हमारे साथ होंगे हम उनसे बातचीत करेंगे, आपको गीत सुनवाएंगे, और उसके बाद हम आपकी कॉल्स और आपके फेसबुक के सारे मैसेजेस कोशिश करेंगे कि शामिल करें। तो आप प्लीज हमें कुछ देर बाद कॉल कीजिए, तब तक आप जवाब अहमद के साथ हमारी बातचीत सुनिए। लेकिन इससे पहले आप सुनिए उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत।
वेलकम बैक, जैसे कि हमने आपको बताया था जवाद अहमद हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच जवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
जी अस्सलाम वालेकुम।
जी जवाद, आजकल तो आपकी डबल मसरूफियात है ना, तो पहले बताइए कि कौन सी मसरूफियत ज्यादा हावी है, सियासत या फिर म्यूजिक?
नहीं, आजकल तो वी आर मोर इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स, वी हैव एज यू नो रिसेंटली फॉर्मड अ पॉलिटिकल पार्टी।
जी जी,
कॉल्ड बराबरी वाली पाकिस्तान, तो हम उसको ही आजकल बिल्ड कर रहे हैं, और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले हैं चूंकि सितंबर अक्टूबर में, तो हम उसके लिए काफी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो आई हैव टू बी इन द ऑफिस फॉर से ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स एट अ स्ट्रेच एवरी डे, बल्कि उससे भी ज्यादा के दिन हो जाता है।
तो जवाद, जैसे कि इलेक्शंस में उस वक्त बहुत ही कम टाइम था, आपको उतना वक्त नहीं मिला कि आप अच्छी तरह से अपनी पार्टी को इंट्रोड्यूस करवा सकें, आम आदमी तक पहुंच सकें, तो आपने अब क्या कोशिशें की हैं, आप कहां तक पहुंचे हैं और कितना फर्क देखा है आपने?
देखिए, हमने तो जब इलेक्शन लड़ा था, मैं तमाम चैनल से जब जाता था
जी,
तो आई ऑलवेज यूज टू से वन थिंग, वन सिंगल सेंटेंस, कि हम लड़ फिर उस ले रहे हैं इलेक्शन, ताकि हम अपनी पार्टी का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं कि हम आम लोगों की पार्टी हैं, हम 99% की पार्टी हैं, हम मिडिल क्लास मेहनत कुशो नौजवानों की पार्टी हैं, वी आर अ लेफ्ट सेंट्रिक पार्टी, ये पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। तो हमने ही बताया था और हर एक को बताना चाहते थे कि इलेक्शन लड़ने का मतलब ही सिर्फ ये है, मेरा स्पेशली इमरान खान साहब के सामने लड़ने का, शहबाज शरीफ साहब के सामने के लड़ने का और बिलावल जरदारी साहब के सामने लड़ने का मकसद ये था कि अगर मैं इन लोगों से लड़ सकता हूं, जो कि ये तीनों बड़ी जो पार्टीज हैं, ये तमाम हम समझते हैं सरमायादार जागीरदार माफिया जिन्हें मौजूद है, इलेक्टेबल्स हैं, अपने पैसों से गवर्नमेंट करते हैं, तो अगर इनके सरबराहान से मैं लड़ सकता हूं, तो फिर एक मिडिल क्लास के नौजवान और मेहनतकश और जितने भी हमारे जो दोस्त हैं जो कि सफेद पोश हैं, उनको भी तहरीक मिलेगी कि वो भी अपने इलाके में भी जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े इन्होंने शख्सियात बनाई, उनके सामने आके इलेक्शन लड़े। तो वो हमसे बड़े कामयाब हुए थे। अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारी पार्टी का नाम बहुत तेजी से जा रहा है लोगों के अंदर, और चूंकि उनको लग रहा है पता कि पार्टी जो मर्जी आ जाए लोग वही के वही हैं, वही लोग पार्टियां बदल के दोबारा किसी और पार्टी से आ गए हैं और वो हमारे लिए कानून नहीं बना रहे।
आपकी इस बात से मुझे स्टेटस याद आ रहा है हमजा अली अब्बासी का, उनका ये कहना था कि अगर वजीर जो है, बल्कि वजीर आजम नहीं, अगर सदारती निज़ाम होगा तो ही हम कुछ तब्दीली ला सकते हैं, अदरवाइज तो वही लोग उन्हीं इलाकों से, वही जागीरदार, वही लोग जो बासर लोग हैं उन्हीं को लोग वोट देंगे तो वही लोग आ जाएंगे, तो तब्दीली आप फिर किस तरह ला सकते हैं? तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं कि क्या आप तब्दीली उस सतह पर ला सकते हैं या उस बारे में आपने क्या सोचा है कि आप कैसे उस चीज को, उस चेन को तोड़ेंगे?
देखिए हमजा अली बासी के बारे में पहले तो मैं ये बात करूं कि मैं तो उसको, उसकी जो राय है उसको बिल्कुल कुछ नहीं समझता। मैं तो समझता हूं कि मुनाफ़िकत से भरे हुए लोग हैं सारे, वो तो वो आदमी है जो पाकिस्तान में ना लेफ्ट है ना राइट है ना कंजर्वेटिव है ना लिबरल है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है।
बिल्कुल, मेरा भी कहने का मतलब जवाब यही है कि वो सोच, कि वो जो सोच है कि देखें बात तो यही है ना कि जो हमारे इलाके में एक बासर आदमी होगा वही इलेक्शन में खड़ा होगा, तो फिर अल्टीमेटली
मैं वही बताता हूँ। लेकिन मैं पहले इससे भी बात करना चाहूंगा, इमरान खान साहब और उनके चेले जितने भी हैं इसे, ये सबके सब मजहब को यूज करते हैं, ये एक ही टाइम पे इस तरह की बातें करते हैं, मदीना की रियासत और सबको, जबकि मदीना की रियासत जिन्होंने बनाई थी उन्होंने ही बनाई थी, हम नहीं बना सकते। इमरान खान साहब खुद 350 कनाल में रहते हैं और हमें वो मदीना की रियासत की बात करते हैं। हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब मदीना की रियासत में वो खलीफा बने थे तो उन्होंने अपनी जो वजीफा जो मुकर्रर किया था वो मदीने के मजदूर की उजरत किया था। ये इमरान खान साहब जो हैं ये अरबपति आदमी हैं, इनकी तीनों बहनें खरबपति हैं, ये हमसे बात करते हैं इस मुल्क में जहाँ 15,000 मिनिमम वेज लोग रहते हैं, 15,000 मिनिमम वेज, और वो भी रहते नहीं है एक्चुअली, ये वो है जो ये अनाउंस करते हैं, ये 6,000, 8,000, 10,000 रुपए में लोग काम करते हैं। ये बताइए ना पाकिस्तानी जो रहते हैं अमेरिका में और पूरे यूरोप में और जान जाके, ये किस आदमी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश की है कि जो साहब अपने प्राइम मिनिस्टर इतने गरीब मुल्क के बनने के बावजूद आज भी 350 के नाम में रह रहे हैं, और भाई आपने जन्नत में जो घर बनाना था वो बना लिया, अब आपने उधर जाके रह लीजिएगा। यहाँ पे तो आम आदमी के लेवल पे आए, इस मुल्क में जो है लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को, इस लोग जो है वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, आप वहाँ 350 के नाम में रहते हैं, आप कुर्बानी करें ना सबसे पहले, आप कहते हैं सख्ती लोग बर्दाश्त करें, आप कहते हैं लोग घबराएं ना, तो आप पहले सख्ती बर्दाश्त करें ना, आपको लक पता जाएगा। ये सब लोग जो है मैं समझता हूँ ये मुनाफ़िकत से भरे हुए, ये लोग कोई कुछ नहीं करना चाहते किसी आदमी के लिए, और सदारती निज़ाम हो या ये पार्लिमानी निज़ाम हो लोग यही रहेंगे। और इमरान खान को फंड किसने किया था मैं आपसे पूछता हूँ, इमरान खान को फंड जो है कि जिन लोगों ने किया वो वही है जो लुटेरे हैं।
तो जवाब आप अपनी हिकमत अमली बताए ना, आपकी क्या हिकमत अमली, आप ये इतना बड़ा चेंज कैसे लाएंगे?
सिंपल सी है, इमरान खान समेत जितने भी ये लोग हैं जिन जो बेनिफिशियरी हैं सिस्टम के, इनकी बहनें समेत नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये जितने भी लोग हैं, इनके जहांगीर तरीन साहब, ये सब लोग जो है ये बेनिफिशरीज हैं, पाकिस्तानी इतने पुअर कंट्री के ये बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के, इन्होंने पैसे कमाए जायज नजायज दोनों तरीके से, उस वक्त जबकि जायज तरीके से भी एक आदमी जब पाकिस्तान में काम करता है आज तो 6,000 रुपये कमाता है। तो अगर देखे हैं तो ये सब लोग, इन लोगों ने लूटा है हर लिहाज से, अब इन लोगों से पैसे वापस लेने हैं, अब वो पैसे जो है वो क्रॉस द बोर्ड लेने हैं। ये तो लाखों लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जिनके पास पैसे हैं, उसमें इमरान खान साहब खुद भी शामिल है। मैं समझता हूँ कि ये एक तहरीक होनी जरूरी है पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास मेहनत पेशा नौजवानों की, जो 99% है पाकिस्तान के अंदर, और ये चंद लाख लोग हैं, 22 लाख बंदे हैं 1%, ये 22 लाख से थोड़े कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, जिन लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा किया वो आप सोच नहीं सकते। मतलब जिस मुल्क में सिर्फ मलिक रियाज साहब जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, सिर्फ थोड़े से कुछ अरब रुपए लेके, पता आपको कितने अरब रुपया उन्होंने दिया?
Exactly.
उन्होंने तकरीबन $4.4 बिलियन दिया है सिर्फ छोड़ने के लिए अपने आप को, तो सोचिए उनके पास होगा कितना। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान लोगों पर इतना पैसा है, इतना पैसा है कि अगर उनसे पैसा वापस ले लिया जाए तो रियासत खुद तालीम दे सकती है, रियासत खुद जो है वो सेहत दे सकती है, रियासत खुद जो है वो रोड बना सकती है, रियासत खुद इंडस्ट्रियलाइज कर सकती है इस मुल्क को। ये ना इमरान खान साहब के बस की बात है, ना उनके जेलों की, और ना ही उनके साथ जितने भी लोग ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये सब जगीरदार समय तो लेके कौन आए हैं इनको, इमरान खान खुद लेके आए हैं। अब ये सदारती निज़ाम की बात करें, क्या सदारती निज़ाम से पहले नहीं रहा? क्या जियाउल हक़ साहब सदर नहीं थे? क्या उसे पहले अयूब खान साहब सदर नहीं थे? क्या याहिया खान साहब सदर नहीं थे? क्या ये आखिर में फरीद मुशर्रफ साहब सदर नहीं थे? ये सदारती निज़ाम के लोग थे सारे, क्या कर लिया उन्होंने उस निज़ाम में? असल बात है इन इक्वालिटी ऑफ वेल्थ की, जब तक इसको हिट नहीं किया जाएगा, जब तक इसको टारगेट नहीं किया जाएगा और उसमें एक पूरी क्लास के पीछे नहीं जाया जाएगा। और ये जो कहते हैं ना जायज और नाजायज, ये सब गलत है। पाकिस्तान में एक दुकान नहीं चला सकते आप बेईमानी किए बगैर।
तो जवाब आप कैसे लाएंगे इतनी बड़ी तब्दीली? आपका क्या ख्याल है कि आपकी पार्टियां, फर्ज करें आप पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और आपको मौका मिलता है, तो आप कैसे करेंगे ये इतने बड़े बड़े मसाइल जो हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये आसान है?
जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं ना सादिया, उस मुल्क में भी बर्नी सैंडर्स यही बात कर रहा है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। बर्नी सैंडर्स क्या कह रहा है वहां पे बैठे? वो इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा नौजवान उसकी बात सुन रहे हैं क्योंकि वहां शऊर है लोगों के पास। पाकिस्तान में तबकाती शऊर ही नहीं है। इन लोगों ने, इन लोगों के जो है आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, इमरान खान समेत सबने। मसला ये है कि देखें, इस मुल्क के अंदर अगर एक तहरीक तबकाती बुनियादों में शुरू हो और लोग ये कहें कि हम महलों की सतह पे ऑर्गेनाइज होंगे, हम खुद क्योंकि वोट देते हैं, वोट तो हमारा है, जिसमें हमने वोट देना है तो लोग इसलिए पार्लियामेंट में जाना है। अगर हम ये तहरीक चलाएं इस मुल्क के अंदर के अपने लोगों को खुद वोट दो, अपने लोगों को खुद खड़ा करो ताकि तुम्हारे तबके के लोग वहां रिप्रेजेंट करें तुम्हें जाके, तो फिर ये मुल्क चेंज होगा। क्योंकि जब मैं जाऊंगा मिडिल क्लास की तरफ से और नुमाइंदा भी मिडिल क्लास होऊंगा, उनको जवाबदेह होऊंगा, अब मिडिल क्लास मुझे और वर्किंग क्लास मुझे वोट देगी, तो उसके बाद मेरे पास तो कोई चारा नहीं होगा ना सिवाय ये कि मैं काम करूं वहां जाके। और ये तबकाती मामला है, इसको खड़ा करना पड़ेगा। जब तबकाती सवाल खड़ा होता है किसी मुल्क में, तो ये सब जो है इनकी तबीयत साफ हो जाती है। जितने जगीरदार, सरमायादार, माफियाज हैं, बदमाश हैं, ये सब पार्टी में मौजूद है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना इस वक्त सादिया, ये बात करना सबसे मुश्किल काम है पाकिस्तान में इस वक्त। पाकिस्तान में तमाम लोग जिनके पास सारी रिसोर्सेज हैं, जिनके पास सारी वेल्थ है, रिकग्निशन ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज, कंट्रोल, पोजिशन, पावर, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। और ये तबकाती बात होती है, इसको हम कहते हैं तबकाती बात, ये कभी किसी ने की नहीं।
तो ये प्रैक्टिकली कितनी आसान होगी जवाब?
किसी ने नहीं की, और उन्होंने भी जब की थी तो पूरा नहीं किया था, क्योंकि वो खुद जगीरदार थे। हम तो नहीं है, हम तो मिडिल क्लास मेहनत किस्म के लोग हैं। और हम साफ कह रहे हैं कि हम 99% की पार्टी है। वी हैव बिल्डिंग आवरसेल्फ ऑन द क्लास क्वेश्चन।
अच्छा जवाद, बात यह है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ आते हैं, और बहुत हर दफा यही होता है कि जो पहले वाले मौजूद सियासतदान हैं उनके बारे में ब्लेम गेम्स भी होती रहती हैं, बातें भी होती रहती हैं, लेकिन जब वो खुद आते हैं तो वो देखते हैं कि ये आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल चीजें और बड़ा उनको रूट से सही करने की जरूरत है। तो आपका क्या ख्याल है कि इतनी डेडिकेशन आप और मुस्तकिल मिजाजी है कि किसी तरह से आप इनको हिला सकते हैं, इन जड़ों को वहां तक पहुंच सकते हैं?
देखिए, हमारे मुल्क में बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म के लोग चाहिए। एक तरफ तो वो प्रोग्रेसिव हो, प्रोग्रेसिव होने का असल मतलब क्या होता है कि आप ये कहते हैं कि किसी का जो भी मजहब है, वो जो भी फिरका है, इसके अलावा वो जिस सूबे से ताल्लुक रखता है, वो चाहे लड़की है चाहे लड़का है, सबका इस मुल्क की मईशत पे, इस मुल्क के सिस्टम पे, इस मुल्क के अंदर जो उगता है, जो बनता है, जो मिलता है, उसके ऊपर बराबर का हिस्सा है। ये सब लोग काम करते हैं उसके लिए। तो इतना प्रोग्रेसिव हो इंसान कि वो हर जगह अपने मजहब को एक्सप्लॉइट ना करे, लोगों को खुदा की बातें कर करके ये ना कहे जी खुदा ने चाहा था कि गरीब हो और अमीर हो। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, इमरान खान साहब उसमें सरे फहरिस्त है, जोर पर कहते रहते जी मुझे खुदा लेके आया। अब ये खुदा ही जो है वो सोचिए उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो कर रहा है, नौज बिल्ला। खुदा का क्या ताल्लुक है? खुदा ने तो हमारे साथ आखिरत के बाद करना है, जो करना है आखिरत पे करना है। इस दुनिया में तो हम खुद लॉज बना रहे हैं, क्या लेजिस्लेशन क्या इमरान खान साहब नहीं कर रहे? क्या यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के लोग लॉज जो बनाते हैं वो खुद बनाते हैं या खुदा बनाता है? नौजुबिल्ला,
इसलिए हम जरूर जवाब, हम आपकी
रेगुलेशन है। इस मुल्क में सबसे बड़ी पट्टी बांधी हुई है इन लोगों ने ये वाली कि ये मुल्क खुदा चला रहा है, इंसान नहीं चला रहे, और हमारे पे खुदा का करम है। और बाकी जो लोग बेचारे मर रहे हैं, जो जिनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उन लोगों को जो है वो खुदा ने कुछ सजा दी हुई है। तो देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ये सब लोग जितने भी है ना, ये अहमदाबादी खास तौर पर, ये तो बहुत ही मुनाफिक किस्म का आदमी है। इसी आप
मैं चाह रही हूँ जवाब की, चूंकि हमारे साथ कोई है नहीं, बिल्कुल
गुमराह किया हुआ सारे नौजवानों को। इन लोगों ने एक तरफ इस्लाम इस्लाम करते रहते हैं, हर अपना ब्रांड बनाते रहते हैं, और हम भी मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं, लेकिन हम नहीं इस तरह की बातें करते। ये लोग सारे के सारे आके एक तरफ ये बातें करते हैं, दूसरी तरफ ये फिल्म में काम करते हैं, फिर वहां भी जाके कहते हैं कि एक्ट्रेसेस को ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। अगर इन लोगों को अमेरिका भेज दिया जाए तो ये तो अमेरिका में निकाले जाए वहां से।
जवाद, आप हमारे साथ ही रहें और हम आपकी पार्टी के बारे में बात करें, क्योंकि आज हमारे साथ कोई है नहीं। हम ये नहीं चाहते कि चूंकि
जी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत बड़ा फैन है इमरान खान का, उसको सपोर्ट करता है, और इसने गुमराह किया हुआ है नौजवानों को।
आपकी पार्टी, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई है नहीं, तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि हम एक पार्टी को इस तरह से उसके बारे में, जी बिल्कुल ठीक है, नहीं करते हम, नहीं मैं चाहती हूँ कि आप, जी जी
इमरान खान खुद है, इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है, नौजवानों को खास तौर पे, इनको असल बात ही पता नहीं लगने दे रहे, ये झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ, झूठ बोल के ये आए हैं, हर किस्म के कॉम्प्रोमाइज करके आए हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक था, ये साहब जो है इन्होंने सारी कौम को आगे लगाया हुआ है, किसी काम कोई हो नहीं रहा, प्लानिंग के बगैर आए हैं ये, इनको सिर्फ शौक था मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, अब इनको नया शौक हो रहा है सदर बनने का, ये साहब जो है सारी उम्र याची करते रहे हैं, आगे भी याची करना चाहते हैं इस मुल्क के लोग।
जवाद मैं चाहती हूँ कि आप, जी
कह रहा हूँ, इलाज के पैसे नहीं है, ये लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं।
अच्छा मैं सोच रही हूँ कि हम पार्टी पे फिर बात ना ही करें, जी हम पार्टी पे बात ना ही करें, क्यों, इसलिए कि इस वक्त हमारे साथ पीटीआई कोई नहीं, हम ये नहीं चाहते कि एक जमात हमारे साथ है नहीं और हम उसके लिए बात करते रहे,
ठीक है,
हम लेके आएंगे पीटीआई के किसी शख्स को,
मैं जो बात कर रहा हूँ ये बोल,
और फिर आप बात कीजिएगा, जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ ही रहिए, हम कुछ और बातें करते हैं, चूंकि मैं ये नहीं चाहती, बिल्कुल, इसलिए जवाद
मैं इस कॉम के अंदर
मैं समझ सकती हूँ, और आपने जो भी बातें की हैं, आप
इमरान खान की वजह से हो रहा है जो हो रहा है,
अब बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, किसी भी कोई भी एक शख्स इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ, जी
इमरान होता है ये उसके ऊपर, और जो इमरान झूठ बोल के आए उसको तो सबसे, आप देखिएगा इनके साथ होगा क्या, ये अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, इनके पीछे लोग जाएंगे, आप देखिएगा, आपको पता नहीं है ना पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आप वहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं, आप आके देखें इधर वो क्या रहा है लोगों के साथ,
नहीं बिल्कुल हम आगाह हैं, हम भी रोज प्रोग्राम करते हैं, जवाद
मर रहे हैं, इमरान खान साहब जो है वो 350 के नाल में रह रहे हैं,
जवाद आप प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके एक और गीत की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर हम सिर्फ म्यूजिक पे बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच आपके, जी बहुत शुक्रिया,
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
कानू तड़पाउनी है बड़ा तू शर्माउनी है ओ कानू तड़पाउनी है निगावां दे विच मैनू अरे की समझाउनी है जे मैं तेरे दिल विच वसदा हां ते दिल नू तली ते धर के हाय सुनिए तू आ जा दिलदार सदके आजा हिरिए मी लख बार सदके सुनिए तू आजा दिलदार सदके आजा हिरिए मी लख बार सदके चोरी चोरी तक मैनू दिल भर जावे सामने जे आवे ते तू होश भुलावे चलावे चुनरी दे ओले मुख फिर भी लुकावे जे मैं तेरे दिल विच वसदा हां ते दिल नू तली ते धर के हाय सुनिए तू आजा दिलदार सदके आजा हिरिए नी लख बार सदके सुनिए तू आजा दिलदार सदके आजा हिरिए नी सदके
वादे हो मेरे लारे दुख दे मेरे सारे ए भी झूठी मोटी प्यार न जता मुंडिया आने जीवन की सारी हमें करना इशारे दिल मन दानी मेरा न सता मुंडिया ए भी करना तू मेरा इंतजार मुंडिया मैं तो नहीं आना एतबार करके
मेरे अज कोल बैके तू दिल दा राज बीबा कदी ते खोल कहके जो दिला प्यार हम सजन दिलदार हम चल तुर नाल बलिए डगर इश्के दी चलिए तेरे मैं गुपया गावा ते सदके वारी जावा मोहब्बत नाल निनावा
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और हमारे साथ हैं जवाद अहमद. जवाद, हमने फैसला किया है कि हम जब दूसरी पार्टियों के लोग लाएंगे अपने शोज में, क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है, हम ये नहीं करते कि कोई साथ ना हो और हम बात करें, तो तब हम जरूर आपको लेंगे और हम समझ सकते हैं आपके एहसास और जज्बात को. और हमारे सारे लिसनर्स कह रहे हैं प्लीज कुछ म्यूजिक के बारे में बात करें. तो अच्छा, आप मुझे बताएं कि मुझे तो आपका ये गीत बहुत अच्छा लगा है, जो ये वाला, आपको अपने सारे गीतों में से कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है?
असल में मेरे जो गाने हैं मुख्तलिफ किस्म के जॉनर्स हैं जिन्हें मैं तबाजबाई करता हूँ. एक तो स्पिरिचुअल सॉन्ग है, जैसे अल्लाह मेरे दिल के अंदर है, या ये तेरा ना मेरा है सब कुछ खुदा का है,
जी जी.
इस तरह के सॉन्ग हैं. या फिर मेरे होते हैं जिस तरह पाकिस्तान के लिए
पैट्रियोटिक भी हैं, जी.
है दोस्ती, आपको मालूम है दोस्ती का,
जी.
जो रहे ना रहे ये जीवन कभी नहीं रहे दोस्ती. वो उसके अलावा फिर मैंने बहुत ऐसे गाने भी किए जिन पर लोग डांस करते हैं, स्पेशली ऐसे मेहंदी गाना है मेरा, वो हर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जब भी कुछ शादी वादी होती है तो वहाँ
बहुत ज्यादा चलाया जाता है, जी जी.
हाँ जी. और इसी तरह फिर ऊंची आवाज वाली है, वो कहती है सही है, मतलब बहुत सारे भंगड़ास हैं जो उस पर लोग डांस करते हैं. फिर कुछ सॉन्ग्स हैं जो बैलेट्स हैं, जैसे बिन तेरे क्या जीना है,
जी जी.
मतलब वो इस तरह के सॉन्ग्स हैं जो कि आप समझे थोड़ा सा सैड सा उनका एक मेकअप होता है, तो मतलब जो इफेक्ट आता है जो उसका गाना सुनने से. तो मैं, मेरा ख्याल है कि ये जो गाना है सोनिए तो आजा दिलदार सब, ये इट वॉज एन अमैल्गमेशन ऑफ से अ बैलेड एंड एन अपबीट सॉन्ग, क्योंकि इसकी ट्यून बैलेड वाली थी और बहुत ज्यादा तेज टेम्पो भी नहीं था, लेकिन साथ ये है कि ग्रूवी ऐसा हमने इसका रखा हुआ था, अपबीट जो था.
बहुत पसंद किया है आपको, पता है इतनी फरमाइशें आती हैं कि हमें यहाँ अपनी लाइब्रेरी को मुझे देना पड़ा कि ये वाला हमें चाहिए, अब ये नई चीजें हमें चाहिए, इतनी इसकी फरमाइशें आती थी तो लोगों ने बहुत ही, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि ये गाना लोगों को बहुत पसंद आया है आपका. तो किसी नए गीत पे काम कर रहे हैं या बिल्कुल छोड़ दी है आपने म्यूजिक की मसरूफियात?
नहीं, असल में मैं छोड़ सकता नहीं हूँ सादिया. देखिए, मेरे वालदैन थे प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के,
exactly.
मेरा एक भाई डॉक्टर है, एक आर्किटेक्ट है, मेरी बहन ने भी एमएससी इकोनॉमिक्स किया था. वी आर मिडिल क्लास पीपल, हमने इस मुल्क में जिस तरीके से हम पढ़े लिखे हैं, जिस तरीके से हमने अपनी स्ट्रगल की है और अभी तक कर रहे हैं, मुझे बताएं कि मिडिल क्लास पॉलिटिक्स या वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स वो हो ही नहीं सकती जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे. आप मुझे बताएं, आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ बराक ओबामा जो है वो काउंसिल से स्टार्ट हुए थे, काउंसिल से जाके उन्होंने पॉलिटिकल बातचीत शुरू की, टैलेंटेड आदमी थे, उनको उन्होंने आखिरकार वो नॉमिनी हुए, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने, फिर दूसरी तरफ भी प्रेसिडेंट बने और आखिर अब वो जाके थे प्रोफेसर लगे हैं, पहले भी प्रोफेसर थे. तो मुझे बताएं कि ऐसा क्या पाकिस्तान में जब तक नहीं होगा उस तक पाकिस्तान चेंज कैसे होगा? तो मिडिल क्लास के लोगों को अपना काम भी करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और साथ पॉलिटिक्स के साथ भी अपना रिश्ता उससे बाहर रखना पड़ता है. वो कहते हैं ना कि शदर से उम्मीदें बाहर रख, तो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास को ये करना पड़ेगा, ये अपनी रोजी रोटी का जो सिलसिला है वो नहीं छोड़ सकते. ये कोई जागीरदार थोड़ी है, ये कोई आसिफ अदारी साहब या इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब जैसे लोग थोड़ी है कि मेंशन में रहते हैं और खाना पीना जो एंटर वो खुद ही ऑटोमेटिकली आता जाता है.
अच्छा जवाब ये बताएं,
उन्होंने सुबह उठना है, खाना खाना है अपना, उसके बाद उन्होंने कोई पॉलिटिक्स करनी है. बट दिस इज वेरी मच नीडेड इन पाकिस्तान, पीपल हैव टू डू देयर वर्क एज वेल एज गेट इनटू पॉलिटिक्स.
अच्छा, तो
नहीं छोड़ सकता ये काम.
सही. और ये बताइए, आपको क्या जैसे पहले शुरू में स्टेज पे आना एक्साइट करता था, अब भी उसी तरह से एक्साइटेड होते हैं आप और थोड़ा सा दिल में घबराहट होती है स्टेज पे जाते हुए, कैसा महसूस करते हैं अब?
सादिया, तो बहुत शुरू में तो बहुत ज्यादा, वेरी शाय पर्सन व्हेन आई वाज यंग, तो अब लेकिन नहीं होती अब तो. मतलब इट्स बीन नाउ अ रेगुलर थिंग विद मी, मतलब कमिंग ऑन गोइंग ऑन स्टेज एंड परफॉर्मिंग देयर. लेकिन ये होता है कि आई ऑलवेज हैव दिस यू नो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी के चलो यार को ये देखते हैं कि लोगों को कौन से गाने पसंद हैं यहाँ पे. आई हैव टू चेक द मूड ऑफ द पीपल, तो आई हैव टू गो बाय दैट फ्लो ऑल्सो जो उधर से मुझे मिलेगा. तो वो मैं थोड़ा सा ध्यान में रखता हूँ, लेकिन मैं उसको समझता हूँ कि बल्कि ना तो परेशानी होती है और ना ही मुझे कोई कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसे मैं देख रहा होता हूँ. एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज यू हैव टू कैटर टू the aesthetic needs of the people sitting in front of me.
तो जवाद, एक आम दिन आपके लिए कैसा होता है, क्या करते हैं आप?
आम दिन तो ज़ादिया मेरा जो होता है ना वो मैं उठता हूँ सुबह तो मैं मतलब वही जो नाश्ता वाश्ता करके मुंह धो के नहा धो के तो उसके बाद ऑफिस चला जाता हूँ और आज से मैं पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाता हूँ सारा मैं आपको बताया मैं बहुत बड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ बहुत से लोग आ जा रहे होते हैं वी आर माशाल्लाह ग्रोइंग वेरी फास्ट अभी अभी लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं नौजवान खास तौर पर क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है जो पाकिस्तान में कि लोग जो है उनके पास कोई अब समझ नहीं आ रहा स्पेस कोई नहीं है तो वो आ रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं आप लीडर बने इसलिए लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो एक तो वहाँ टाइम स्पेंड करता हूँ उसके बाद फिर हम मतलब मैं अपने घर वालों के साथ भी टाइम गुजारना होता है वापस जब आऊंगा तो थोड़ी देर उधर बैठूंगा आपसे शाम को जब स्टूडियो जाना पड़ता है म्यूजिक के लिए कोई अगर कोई क्रिएशन करनी हो अभी मैं गाना लेके आ रहा हूँ बड़ा मजेदार है वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो नॉस्टैल्जिक सा है स्पेशली एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी जो है वो जो मैंने गाना बनाया था आजा हूँ ढोलना मेरा दिल तोड़ना नीचे मर जाऊंगी तेरे बिना वो भी मैंने एक्सपेक्टेड के लिए बनाया था उसने तो वो आप ये समझे कि वो तो पंजाबी में था ये जरा उर्दू में है लेकिन ये इसके वर्ड्स बड़े बड़े सैड भी हैं और खुशी वाले भी हैं बंदा वापस आ रहा है अपने मुल्क में तो वो इस तरह के कुछ वर्ड्स के तो आई थिंक यू विल लाइक इट
बिल्कुल फीडबैक जरूर देंगे हम आपको जवाब थोड़ी देर साथ रहिए एक और गीत आपका सुनवाते हैं बहुत ही शुरू का मेरा बहुत ही फेवरेट और इसकी भी बहुत हमें फरमाइशें आती हैं और इसका वीडियो लोगों ने बड़ा पसंद किया था ये सुनते हैं फिर आपसे बातचीत करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है और आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और हमारे साथ हैं जवाद अहमद जवाद याद आया ना आपको ये गीत बहुत प्यारा गीत है आपका ये
दिस वाज एक्चुअली द सॉन्ग वाज वन ऑफ माय अर्लीस्ट सॉन्ग्स
जी बिल्कुल अच्छा तो जवाद ये गीत लिखता कौन है हेलो आवाज आ रही है जवाद
You have 66.
उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है हम फिर से उनको कॉल करते हैं और बातचीत उनके साथ करते रहेंगे इस दौरान मैं आपके कुछ मैसेजेस पढ़ देती हूँ जो आपने बहुत ज्यादा पूरा हफ्ता हमें बहुत ज्यादा मैसेजेस किए हैं सजाद खान पेशावर से लिखते हैं कि मेरे अबू को आपका शो बहुत पसंद है लेकिन वो मैसेज लिख नहीं सकते इसलिए मेरे पास बैठते हैं और कहते हैं कि आप चार्ट बस्टर्स की होस्ट सादिया को मैसेज लिखो और उसे बताओ कि मुझे कितना पसंद है उनका शो बहुत शुक्रिया अगर मुझे अच्छी तरह याद है इस दफा तो आपने अपने अबू का नाम नहीं लिखा अगर सही याद है तो खान बहादुर नाम है आपके अबू का तो बहुत शुक्रिया आपका पिछली दफा हमने आपकी पसंद का एक गीत प्ले किया था इस दफा हम आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर सके क्योंकि आपकी फरमाइश का गीत मुझे मिल नहीं पाया तो पब्बी से इफ्तिखार अहमद लिखते हैं कि आपको और आपके मेहमान को सलाम जवाद भाई अल्लाह आपको कामयाब करे लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूँ सच बोलना और वक्त पर बोलना और यू टर्न ना लेना इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे तो ये इफ्तिखार अहमद साहब का पब्बी से मशवरा है जवाद के लिए, और इनकी आपको बता दूं कि इनकी फूलों की दुकान है और उन्होंने ढेर सारे फूल हमें तस्वीर बना के भेजी है। सलीम अली मिनहास सोरन कोट कश्मीर से लिखते हैं कि जवाद को मेरा सलाम। नसीर वानी भारत के जेर इंतजाम कश्मीर से लिखते हैं कि मैं आपका रेगुलर लिसनर हूं, कहते हैं कश्मीर में 4-5 रोज बाद बारिश कुछ थमी है और मतला थोड़ा साफ हुआ है, तो आजकल के मौसम में यहां ट्यूलिप्स का एक बाग है, बहुत बड़ा बाग है जो सयाहों के लिए खुलता है और बहुत बड़ी तादाद में सयाह यहां आते हैं। तो सादिया जी मैं आपको दावत देता हूं कि आप यहां आएं। तो नसीर बिल्कुल पाकिस्तान कभी आए, असल में हम लोग जब पाकिस्तान आते हैं तो इतने कम वक्त के लिए आते हैं कि बमुश्किल फैमिली को टाइम दे पाते हैं, लेकिन दिल बहुत चाहता है कि इतनी खूबसूरत जगहों को देखा जाए, तो जरूर किसी वक्त प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच आपकी दावत का। तो अब्दुल्ला जुनेजो लड़काना से लिखते हैं, बहुत उम्दा प्रोग्राम है, मुझे बहुत पसंद आया और अगले हफ्ते आपने एक नगमा प्ले करने को कहा है जो कि मैं इस दफा नहीं कर सकी, तो जवाद ने हमें ज्वाइन किया है। जवाद आवाज आ रही है आपको?
जी,
जवाद मैं ये पूछ रही थी कि पोइट्री कौन करता है, आप खुद कॉन्सेप्ट देते हैं या कौन लिखता है गीत?
नहीं, मैं खुद ही करता हूँ।
अच्छा।
तो लेकिन असल में ना, जी अभी तक मैंने जितने भी गाने गाए हैं मेरी 90% बल्कि 95% पोइट्री मेरी अपनी है। कभी कभी मैं इंस्पिरेशन ले लेते, मेहंदी का जो गाना है उसके अंदर जो परवीन शाकिर साहब का कलाम भी है, मैंने थोड़ा लिखा है, उनका ज्यादा यूज किया है।
सही,
इस तरह भी होता है कभी कभी। हाँ जी,
क्योंकि बड़ा उसमें फ्लो बहुत है, आपका कोई भी गीत अगर आप सुनो ना तो उसमें बहुत फ्लो है शायरी में। और
आई मस्ट से, आई वुड से दैट यू हैव बीन बीइंग वेरी काइंड टू मी,
नहीं मैं सही कह रही हूँ। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि फैमिली को आप किस से शिकायत होती है कि आप उन्हें कम टाइम देते हैं और मसरूफ ज्यादा रहते हैं अब?
जी वो तो है, बहुत देखें पहले भी मैं बहुत ट्रैवल करता था पूरी दुनिया में, ज्यादा मैं म्यूजिक बहुत ज्यादा चुके जा रहा था उस जमाने में, बहुत फोकस था। तो मतलब इमोशनली, लेकिन आप हो जाता है सर, आप प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली आप उनके साथ मिलते कम है, आप होते नहीं है तो मिलेंगे कैसे। तो अभी भी ये हुआ है कि चूंकि स्विच किया है पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में तो लाहौर में होते हुए भी मैं ज्यादातर घर से बाहर होता हूँ और बहुत मीटिंग चलनी पड़ती है, तो मेरा ख्याल है ये फैमिली लाइफ तो जो है मेरी जो है मरते दम तक इस तरह ही रहेगी, एंड दे हैव टू बेयर विद मी, उनको भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा।
तो उनको उनमें से फैमिली में किसी को शौक है गुलकारी का या फिर पोएट्री का, किसी ऐसे आर्ट की किसी भी सिंफ का?
नहीं, मेरे घर में मैंने उनको बताया था ना, मेरे दो भाई हैं
तो किसी को शौक नहीं है।
अच्छा गाते हैं?
अच्छा गाते हैं,
हाँ बहुत अच्छा गाते हैं। और असल में ये बचपन से ही ना हमें वालिद साहब ने बड़ा इंकरेज किया, मैं क्रिकेट भी खेलता रहा, इन्होंने भी क्रिकेट खेली, स्क्वाश खेली, हम बहुत ज्यादा खंडरे किस्म के थे, सामने में खेलते बहुत थे और म्यूजिक भी बहुत करते थे और गाते भी थे, इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे। तो माई फादर वॉज अ प्रोग्रेसिव मैन, उन्होंने कहा कि आप तो मुझे करो लेकिन डिग्रीज लेके देनी है मुझे, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, मेरे भाई ने आर्किटेक्चर की, उससे छत्तीसगढ़ ने डॉक्टरी की उसने, लेकिन हम तीनों जो है वो ये चीज करते थे, हम तीनों बड़ा अच्छा गाते थे, लेकिन आई वॉज द ओनली वन हु परसूड म्यूजिक एज अ करियर।
सही,
बाकी दोनों ने इस तरह नहीं किया।
तो कोई ऐसी बात है जवाब जो आपके फैंस आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानते?
बिल्कुल पता नहीं, अब जो चीजें वो नहीं जानते
वो नहीं बताना चाहते,
नहीं जानता है। वो कहते हैं ना इंसान को अपने कुछ चीजों पे पर्दे रखने पड़ते हैं।
सही है,
वो ज्यादा अच्छी चीज होती है।
अच्छा, तो
सोशली जो है इंसान उतना ही ओपन अप होता है जितना वो हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा रिजर्व हूँ इस मामले में।
अच्छा,
मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, मैं बात बताऊँ आपको, बता दिया, मैं आई एम द लीस्ट जजमेंटल ऑफ ऑल पीपल। मैं तो बिल्कुल ही, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता किसी का क्या मजहब है, किसी का क्या कल्चर है, किसी कोई किसको किस चीज को किस तरह देखता है, दैट इज एंटायरली हिज प्रॉब्लम एंड दैट इज एंटायरली हिज मैटर विद गॉड, वो उसका और खुदा का मामला है, मेरा कोई मामला नहीं है इसमें। इसलिए मैं तो समझता हूँ, मैं अपने बारे में भी इसीलिए कहता हूँ कि मेरे कामों में भी जो है मेरी प्राइवेट पर्सनल लाइफ है, मेरे घरेलू लाइफ जो है वो मेरी अपनी है,
बिल्कुल अलग है,
तो वी डोंट वी शुड नॉट इंटरवीन और इंटरफियर इन ईच अदर्स लाइफ।
अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, आपने हमें इतना वक्त दिया और बहुत शुक्रिया जवाद, और जरूर हम आपको अपने जो पॉलिटिकल शोज हैं उनमें जरूर इनवाइट करेंगे ताकि हम आपसे बात कर सकें, आपके जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो जान सकें, आपका नुक्ता नजर जो है वो उस पे बात करें।
जी जी, मैं फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ बात करूंगा।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
डेटा के साथ बात। आई एम एन इंजीनियर, मुझे पता है मैं क्या, और पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कोई इंसान यहाँ पे पाकिस्तान में फिगर से बात ही नहीं कर रहा।
नहीं बिल्कुल, हम यही जवाब, चूंकि हम लोग ये नहीं करते, बहुत सारे ऐसे टीवी शोज होते हैं कि जो बस वो लड़ाई शुरू कर दें, हम चाहते हैं कि हर बंदा अपना नुक्ता नजर बयान करे, और जो हमारे साथ मौजूद नहीं है तो हम मुसलसल उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं है, तो फिर हम उस पर बात ना करें, तो हम बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे हम, और आप भी आइएगा, ठीक है? बिल्कुल, हम आपको पॉलिटिकल शोज हमारे होते हैं, हम जरूर आपको इन्वाइट करेंगे, आप बात कीजिएगा, वो अपनी बात करेंगे, आपको पूरा मौका देंगे कि आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो व्यूज हैं वो आप जरूर उस पर बात करें। तो लास्ट में, जी लास्ट में मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा शौक, कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या अपनी रोजमर्रा की रूटीन में और आपकी मसरूफियत की वजह से वो कर नहीं पाते, कोई ऐसी चीज है?
मेरा ख्याल है मेरे दोस्त जो है बड़े अच्छे, कुछ दोस्त हैं, उनके साथ मुलाकात बहुत कम होती है। दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली मिस इन माय लाइफ, और दिस वाज वन ऑफ माय गुड एस्पेक्ट्स। वो कहते हैं ना आपकी पर्सनैलिटी के, आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो बड़ा अच्छा एक ताल्लुक रखते हैं, तो वो थोड़ी सी कमी हो गई है, मेरा ख्याल है, मुझे उसके होता है कभी।
बहुत शुक्रिया जवाद, और गुड लक, और थैंक यू सो मच, और जरूर हमारे लिए टाइम निकालिएगा, हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे अपने पॉलिटिकल शोज में, आपकी पार्टी के बारे में हम फिर उसमें बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आपके इस गीत के साथ ही हम आपको खुदा हाफिज कहते हैं।
बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, तेरी पायल की छन छन, तेरी सांसों का सरगम, तेरी खुशबू तेरी प्रीत, याद आए मेरे नीत, जो तुझ पर लिखे थे वो सारे मेरे गीत, सारी खुशियां सपने मेरे हैं तेरे साथ। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना।
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस है और आप शो सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया और मेरे साथ हैं शहनाज, और बल्कि मैं शहनाज चूंकि आज सुन रही हैं तो उनको बता दूं, मैं जब जाती हूं ना वापस तो मैं भूल जाती हूं कि आप लोगों ने मुझे क्या मैसेजेस दिए थे। तो आप लोग हमेशा सलाम कहते हैं और आपके बेशुमार खतूत हमें मिले हैं, आपके फेसबुक के मैसेजेस हमें मिले हैं जिसमें आपने तमाम टीम को, शहनाज को और जितने लोग हैं उनको आपने नए साल की मुबारकबाद अब अप्रैल में हमारे पास पहुंची है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमें कॉल की है विहाड़ी से अल्लाह दिता शाकिर साहब ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, हमारा भी खत मिला है कि नहीं मिला?
नहीं, आपका अभी तक मुझे नहीं मिला, मुझे तारिक चौथाई साहब का मिला है खत, मुझे अफजल अजीज साहब का मिला है चकवाल से, यानी जो हमारे कॉलर्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, और बहुत से मिले, लेकिन अभी तक आपका खत मुझे नहीं मिला, तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट उसमें आएगा।
हाँ जी, और आपका कैलेंडर जो है वो अभी तक नहीं मिला, उम्मीद है कि साल के आखिर तक मिल जाएगा।
अच्छा, देखे ना, भेजेंगे तो मिलेगा ना, अभी तो भेजा ही नहीं है
तो फिर तो गिला नहीं है। तो माशाल्लाह आज है, आपने जवाब अहमद साहब को लिया, चलो उन्होंने बड़ी अच्छी बड़ास निकाली जो दिल की थी तो पर ये काम जिसका काम उसी को साजे, ये बड़े बड़े दावे होते रहते हैं। बहरहाल हमें अच्छी लगी गुफ्तगू उनसे। तो जवाहर साहब ने अपनी पार्टी का नाम तो नहीं बताया,
बराबरी, उनकी बराबरी पार्टी है।
अच्छा, बराबरी, यानी कि इक्वल राइट जो है वो सभी को मिलेंगे। और हमारा इंटरनेशनल रेडियो फोरम के डॉक्टर अहमद नदीम भट्टी जी ने पिछले दफा साल भी जो उनके बाइक का इंतकाल हुआ है, तो हम जितने भी इंटरनेशनल रेडियो फोरम के लिस्नर हैं हम उनसे ताजियत करते हैं। और इसके अलावा अब्दुल गनी, आबिद रमजान, कैसर गुलजार नदीम, सफीर मलक और फयाज रोडी और इशाक भुट्टा साहब सुन रहे हैं आपको, वो भी
बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच।
और इसके अलावा पठाने खां या कौशर जापानी, बड़ी अच्छी सिंगर है, उनका अगले प्रोग्राम में हो सके तो जरूर आप सुनवा दीजिए।
जी ठीक है।
तो आप कॉलर को टाइम दिया करें, 25 मिनट के लिए कोई मेहमान हो तो उसको 25 मिनट के लिए क्लोज किया करें।
चले ठीक है, आप फिर जल्दी बात करें ताकि मैं ज्यादा लोगों को जगह दूं प्रोग्राम में। खालिद उमर साहब ने कॉल की है मियांवाली से। अस्सलाम वालेकुम खालिद उमर साहब। हेलो हेलो, लगता है खालिद उमर साहब की कॉल ड्रॉप हो गई। आप दोबारा कॉल कीजिए 08007789 पर। बात करते हैं अर्शद नदीम से जिन्होंने भक्कर से कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अर्शद नदीम साहब, शायद हमारे फोन में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो चलते हैं अगला, आपका जो गीत है वो आपको सुनवाते हैं। इसकी फरमाइश की थी जफरउल्लाह खान साहब ने तौंसा शरीफ से, लेकिन हमारे साथ शहनाज कह रही हैं कि कॉलर हैं, हम उनसे बात कर लें क्योंकि जी जी
जी होल्ड की है।
बोलिए प्लीज, बात कीजिए।
हेलो
जी जी, बात कीजिए।
हेलो
जी जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपको।
अब्दुल अजीज बोल रहा हूँ जी, चकवाल से।
जी अब्दुल अजीज साहब बोलिए।
अल्लाह ताला आपकी पूरी टीम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी ये गुजारिश है कि ये जो पहले आपने जवाद साहब को टाइम दिया था
जी जी,
कि इनको इस तरह का आपका चार्ट पर बस्टर्ड के हिसाब में तो वो नहीं आता। चलें वो गुलुकार हैं तो ठीक है, तो बाकी सबसे पहले तो अगर उनकी बराबरी पार्टी है तो ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है, वो कम अज कम उर्दू तो बोलें ताकि हमें भी समझ आए कि वो क्या कह रहे हैं। और दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि एक नात ही सुना दिया करें प्रोग्राम में, तेरे होते जन्म लिया होता, ये प्लीज अगर आपके पास अवेलेबल हो वो सुना दें, या कोई भी नात पाक सुना दिया करें, बड़ी मेहरबानी।
बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और अब देखिए ना, अगर म्यूजिक का प्रोग्राम है तो हम सिंगर को ही लाएंगे ना, तो बनता तो है, लेकिन ये है कि थोड़ा चूंकि कॉल कट गई तो इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। जफरउल्लाह खान साहब ने तौंसा शरीफ से इसकी फरमाइश की थी। तो जफरउल्लाह साहब, बल्कि पिछले जुमे को ही, तो देखिए मैंने कितनी जल्दी जल्दी आपकी फरमाइश पूरी कर दी क्योंकि हमारे पास ये गीत मौजूद था। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा।
अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा।
वेलकम बैक। आप लोगों को याद है ना पिछली दफा असफर ने क्या कहा था ये गाना सुन के? असफर साहब ने पिछली दफा कहा था कि ये फिर मतलब चाहता क्या है, कुछ भी तो इसके पास है नहीं, कुछ देना ही नहीं चाहता, और फिर ये भी चाहता है कि जब घर आए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो, हंसते हुए मिले सब और सब कुछ बाश, तो लगता है कोई बेरोजगार आदमी है। तो उसने बहुत मजाक उड़ाया था इस गाने का, बड़ा हंसा था इसके बोलों पर, तो मुझे वही बात याद आ गई। हमारे साथ खालिद उमर न्याजी हैं, उनकी कॉल कट गई थी, उनसे फिर से बात करते हैं। जी खालिद साहब, आपको आवाज आ रही है?
यार क्या साहब, ये सिस्टर ठीक है? आपका शो सुन रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त जा रहा है और कॉल भी जबरदस्त है, तो मैंने कहा भी आपको सलाम कर लूँ।
बहुत शुक्रिया।
ये जवाब साहब बात थे, वो मेरा ख्याल है गांव में ज्यादा सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं
आजकल,
तो चलो उनको कामयाब करे, और कह रहे हैं कि इमरान खान ने गुमराह कर रखा है, ऐसी कोई बात तो नहीं, उसको कभी 8 माह हुए हैं, क्या उन्होंने गुमराह करना है और क्या खाना है और क्या करना है, तो बहरहाल वो भी आ जाएंगे पाकिस्तान में तो काफी सावधान है और मुकाबला करेंगे, तो जिताए अल्लाह उनको और हुकूमत दे। तो बाकी जनाब मैं मेरे दोस्त सुन रहे हैं, पठान खान पटके वाला है, उसके बाद यार मोहम्मद मजारी साहब हैं, मुमताज शेठ अंजम साहब हैं, उनको सलाम करता जाऊंगा, और
आलम
अवान नली शाह डॉक्टर साहब जी,
बहुत शुक्रिया।
तौलक को गीत सुना दो साहब, ये साहब
नेक्स्ट में सुना दूंगी, ठीक है?
अच्छा,
बहुत
नहीं है,
नहीं, थैंक यू।
बीमार हैं वो,
अल्लाह ने उन बिल्कुल हमारी बात हुई है, जी
करना।
जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हमारी सामल से बात हुई थी, वो आए भी थे हमारे पास स्टूडियो में, तो हमारी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तो जरूर नेक्स्ट में कोशिश करेंगे आपको उनका कोई गीत सुना दें। हाफिज साहब से बात करते हैं, बुजदार से कॉल की है उन्होंने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम मैडम, कैसे हो?
जी जी बोलिए।
मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ, आप इलाही बात।
जी जी बोलिए।
आपका प्रोग्राम फर्स्ट क्लास, आपके आपकी बातें फूल गुलाब, आपका अंदाज अमाल लाजवाब।
थैंक यू सो मच।
हमारी जवाब हमारी दुआ है हमेशा कैम रहे आपका जवाब, आपका प्रोग्राम बहुत प्रोग्राम बड़ा मतलब सुनते
हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शौकत अली अंजुम है डहरा वाला से, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मैडम
जी। वालेकुम सलाम।
शौकत अली अंजुम डहरा वाला सरकार साथी बहन, बड़ी देर बाद आप आई हैं शो में, तो मैं बड़ा खुश हुआ सुनकर। तो ये मतलब बात होती है इंसान को देर से हो जाती है, लेकिन मैं इसका बुरा महसूस नहीं करता। मैंने पिछली दफा आप एक गाने की फरमाइश की थी आपकी, जो पहले की मेजबान थी ना उनसे, ऐ चांद उनसे जाकर मेरा सलाम कहना, ये सरफरोश फिल्म का नगमा था और उसकी जुबैदा खानम की आवाज थी।
मैंने सुना दिया तो पिछली दफा जुबैदा खानम की आवाज में आपको गीत सुना दिया था आपका नाम लेकर। जी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और अगला गीत सुनते हैं जिसकी फरमाइश की थी डॉक्टर अहमद नदीम ने मुजफ्फरगढ़ से पिछले जुमे को, तो उनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।
मुरझाए हुए फूलों की कसम, मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा ना आऊंगा। मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा ना आऊंगा। मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मैं राहों में खो जाऊंगा इस देश में फिर ना आऊंगा ना आऊंगा। हर जख्म छुपाया सीने का, इस जुर्म में जालिम दुनिया ने हक छीन लिया है जीने का। सीने से लगा कर दुख सारे, इस महफिल से उठ जाऊंगा, इस देश में फिर ना आऊंगा।
वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स, ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस है और हम बात करेंगे पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से सूबेदार मोहम्मद इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी इकबाल साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है और आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मैं शामिल करना चाहती हूं। नजीर अहमद भिंडर और फाइक अहमद भिंडर ने अरूप गुजरांवाला से प्रोग्राम को पसंद किया और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया है। सादिया अहमद एबटाबाद से लिखती हैं कि हमारा शो हमें बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगा सादिया कि आपने इसे अपना शो कहा, ये वाकई आप सबका शो है। और लिखा है कि आपकी कॉल नहीं मिलती और पूछा है कि बाकी कॉलर्स जिनसे मिलती है, जिनकी कॉल मिलती है उनकी कैसे मिल जाती है, मुझे बताएं। तो और आपने लिखा है कि जवाद अहमद को बुलाने का शुक्रिया, मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, तो वो मिलाते रहते हैं, तो बस उनकी लक है, इसमें कोई भी साइंस नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि बस वो जब एक दफा मिल जाती फिर पता नहीं क्यों कॉल थ्रू हो जाती है उनकी, फिर मिलती रहती है। मोहम्मद असलम साहब लिखते हैं, सादिया पिछले हफ्ते का प्रोग्राम नहायत खूबसूरत और मजेदार था, एक हफ्ता इंतजार करना पड़ा। आलम लोहार की आवाज में आप एक गीत सुनना चाहते हैं तो जरूर आपको सुनवाएंगे, आप प्रोग्राम सुनते रहिए। रियाजुल हसन लिखते हैं, बाजी आपके प्रोग्राम का बड़ी शिद्दत से इंतजार होता है, बहुत शुक्रिया। तौसीफ शौकी लिखते हैं कि मुझे बहुत ईगरली मैं इंतजार कर रहा हूं आपके इस शो का, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सैयदा नकवी एबटाबाद से लिखती हैं कि प्लीज अपने प्रोग्राम का टाइम बता दें, तो बिल्कुल आप हर जुमे को रात 9 से 9:55 तक हमारा ये शो सुन सकते हैं, तो आप हर जुमे को हमारा प्रोग्राम सुना कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी जो फीमेल लिसनर्स हैं वो मैसेज करती हैं या कॉल करती हैं, क्योंकि बहुत ही कम सुनती तो बहुत है मुझे पता है, क्योंकि हमें अक्सर मैसेजेस आते हैं लेकिन हमें कॉल्स कम करती हैं अब आप लोग, तो प्लीज आप कॉल भी करें ना। हमारा नंबर आपको हम बता देते हैं 0800777789। और नसीरुद्दीन चित्राल से लिखते हैं कि सादिया जी मेरा आखिरी मैसेज है, अरबे क्यों, क्योंकि आपने लिखा है कि आप मेरे ज्यादा मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल नहीं करती, ना ही मेरी फरमाइश पूरी करती हैं, या लोग बहुत शौक से आपका प्रोग्राम सुनते हैं। बहुत शुक्रिया नसीर साहब, मुझे लगता है आप शो सुनते नहीं वरना मैं आपके सारे मैसेजेस शामिल करती हूं, आपकी फरमाइशें तक पूरी करती हूं, और क्योंकि हफ्ता भर मैं लाइब्रेरी से वो सारी फरमाइशें ढूंढती रहती हूं, अगर कुछ ना मिले तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। और हमारे ऐसे बहुत से लिसनर्स हैं जिनकी कभी कोई फरमाइश पूरी नहीं होती लेकिन वो सारे गीतों को पसंद करते हैं और खुश रहते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर ताल्लुक तो नहीं तोड़ते ना, इस तरह तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ज्यादा सेंसिटिव मत हो और हम आपके मैसेजेस और फरमाइशें भी शामिल करते रहते हैं। और अभी जिस गीत की बात हुई है वो आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद असलम साहब की पसंद का ये गीत। इसके साथ ही शहनाज को और सादे को इजाजत दीजिए, अगले जुमे तक अपनी पसंद का ये गीत सुनिए और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
ओ बोल मिट्टी दिया, ओ बोल मिट्टी दिया, बाबिया तेरे दुखां ने मारी मुका लिया मेरा सोना माही, आ जा
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے۔ تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
22 ماہ کے بعد آخر کار جمعرات کے روز امریکی عوام اور کانگریس کو سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی رپورٹ دیکھنے کو ملی۔ رپورٹ میں ٹرمپ کی صدارتی مہم اور روس کے درمیان کسی ساز پاس کے کوئی شواہد نہیں ملے، لیکن ملر اور ان کی ٹیم اس بارے میں کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی کہ آیا صدر نے انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی تھی۔ حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس کانگریس پر اس بارے میں مزید تفتیش کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ملر رپورٹ کے اجرا کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں بہت خوش تھے۔
I'm having a good day too. It was called no collusion, no obstruction.
میرا بھی آج بہت اچھا دن ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن رپورٹ صدر کی جانب سے تفتیش پر اثر انداز ہونے کے بارے میں متعدد واقعات کی تفصیلات دیتے ہوئے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے سوال پر ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے چارٹ ڈے کہتے ہیں کہ ایک مرحلے پر صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اس وقت کے وکیل ڈان میکگہن کو خصوصی کونسل رابرٹ ملر کو فائر کرنے کا حکم دیا تھا۔
Now, McGahn rebuffed this effort, but it shows how the president at, and the report
اب میکگہن نے اس کوشش کو مسترد کیا ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح صدر نے اس تفتیش کو اپنی صدارت کے ایک ممکنہ خاتمے کے طور پر اور ایک ایسی چیز کے طور پر دیکھا تھا جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتی تھی، اور رپورٹ میں ان کے بیان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایسوسیٹڈ پریس کے چارٹ ڈے کے۔ رپورٹ میں 2016 میں ٹرمپ کی صدارتی مہم کے ساتھیوں اور روسیوں کے درمیان متعدد رابطوں کی نشاندہی کی گئی ہے، تاہم اس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مہم اور روس کے درمیان کسی مجرمانہ سازش کے بارے میں شواہد کا فقدان تھا۔ لیکن مسٹر ملر نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آیا صدر نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا کہ ٹرمپ نے کوئی جرم کیا تھا، لیکن اس میں انہیں بری الذمہ بھی قرار نہیں دیا گیا۔ آخر میں اٹرنی جنرل ولیم بار نے یہ فیصلہ کیا کہ رکاوٹ ڈالنے کے شواہد سے کسی مزید قانونی کاروائی کی اجازت نہیں ملتی۔
Apart from whether the acts were obstructive, this evidence of non-corrupt motives
اس سے قطع نظر کہ آیا وہ اقدامات رکاوٹ ڈالنے والے تھے۔ بددیانتی سے آری محرکات کی یہ شہادت ایسے کسی بھی الزام کے خلاف بھاری وزن رکھتی ہے کہ صدر کی جانب سے تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی خراب نیت تھی۔ یہ الفاظ تھے اٹرنی جنرل ولیم بار کے۔ ڈیموکریٹس ممکنہ صدارتی رکاوٹوں کے تفصیلی بیانات پر فکر مند ہوئے اور انہوں نے فوری طور پر مزید تفتیش کا عزم ظاہر کیا، جن میں ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین ڈیموکریٹ رکن جیرلڈ نیڈلر شامل تھے۔
The special counsel made clear that he did not exonerate the president, and the responsibility now falls to Congress.
خصوصی کونسل نے یہ واضح کیا کہ انہوں نے صدر کو بری الذمہ قرار نہیں دیا ہے، اور اب کانگریس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صدر کو ان کے اقدامات کا جواب دہ ٹھہرائے۔ کانگریس کو پوری مکمل رپورٹ اور خصوصی کونسل کی جانب سے ظاہر کیے گئے شواہد حاصل کرنے چاہیے۔ یونیورسٹی آف میامی کے قانونی تجزیہ کار ڈیوڈ ابراہم کہتے ہیں کہ صدارتی رکاوٹ کے بارے میں جاری سوالات ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پر برا اثر ڈال سکتے ہیں۔
I'm not sure that the findings constitute a victory for the president, but those
میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ نتائج صدر کے لیے کوئی کامیابی ہیں، لیکن روسی مداخلتوں کے مؤثر ہونے اور وائٹ ہاؤس کی رکاوٹوں سے متعلق کوششوں کی حد اور گہرائی سے متعلق دونوں دعوے حقائق کے برعکس ہیں۔ اور سیاسی ماہر بل سوینی کہتے ہیں کہ مولر کی رپورٹ پر جاری تنازع ممکن ہے ٹرمپ کے اقدامات پر قانونی اور سیاسی بحث کو غیر معینہ عرصے تک جاری رکھے.
If this goes on for weeks and months, it will be another.
اگر یہ بحث ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہی تو یہ ایک ایسے ملک میں جو پہلے ہی بہت زیادہ منقسم ہے ایک اور باعث تفریق مسئلہ.